चैप्टर 29 भक्ति। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट राग ही भक्ति है। भक्ति का मूल है राग तत्व। महत के प्रति निश्चल समर्पण भक्ति की अनिवार्य शर्त है। धर्म के सच्चे स्वरूप को भक्त ही, महत के प्रति अहंकार विगलित चित्त से समर्पित व्यक्ति ही धारण कर सकता है। इसलिए जहाँ भक्ति है वहीं धर्म है। उदाहरण, ईश्वर के स्वरूप पर मन का आकर्षित होना या लुभाना ही भगवत प्रेम है, जिसे भक्ति कहते हैं। सूरदास, पृष्ठ संख्या 26। भक्ति की आनंदमयी प्रेरणा से शील की ऊंची से ऊंची अवस्था की प्राप्ति आपसे ही हो जाती है और मनुष्य संत पद को पहुंच जाता है। इस प्रेरणा में रूप, गुण, शील, बल सबके प्रभाव का योग है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 39। भक्ति द्वारा अपनी व्यक्त सत्ता को भगवान की व्यक्त सत्ता में मिलाना मनुष्य के लिए जितना सुगम है, उतना ज्ञान द्वारा ब्रह्म की अव्यक्त सत्ता में अपनी व्यक्त सत्ता को मिलाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 36। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भीषण वस्तु को देखकर उत्पन्न चित्त की विकलता ही भय है। उदाहरण, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण और स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। उदाहरण, जीवन का सौंदर्य वैचित्र्यपूर्ण है। उसके भीतर किसी एक ही भाव का विधान नहीं है। उसमें एक और प्रेम, हास, उत्साह और आश्चर्य आदि हैं। दूसरी ओर क्रोध, शोक, घृणा और भय आदि हैं। चिंतामणि भाग 2, पृष्ठ संख्या 47। भयानक, जब भय स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पणकार के अनुसार भय रूप स्थायी भाव का आस्वाद ही भयानक रस है। थोड़ी उदाहरण, थोड़ी देर वही ठहरने पर ऐसा भयानक और विभत्स कांड देखने को मिलेगा जो भुलाए न भूलेगा। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 36। भाव, मानसिक स्थिति। भरत मुनि के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का व्यंजक प्रदर्शन ही भाव है। हिंदी साहित्य कोश, पृष्ठ संख्या 545। साहित्य दर्पणकार ने प्रतीयमान संचारी भाव, देवादि विषयक रति तथा उद्बुद्ध मात्र स्थायी भाव, रस दशा तक पहुंचा हुआ स्थायी भाव या अपरिपुष्ट स्थायी भाव को भाव कहा है। साहित्य दर्पण तृतीय परिच्छेद, पृष्ठ संख्या 270। आचार्य शुक्ल ने भाव की परिभाषा आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर की है। उनके अनुसार भाव वेग युक्त जटिल मानसिक अवस्था है, जिसमें मन और शरीर दोनों की वृत्तियां क्रियाशील होती हैं। उदाहरण, भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पर्य बोध मात्र नहीं है, बल्कि वह वेग युक्त और जटिल अवस्था विशेष है, जिसमें शरीर वृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है। जैसी ग्रंथाली भूमिका, पृष्ठ संख्या 107। उदाहरण, अतः भाव उस विशेष रूप के चित्त विकार को कहते हैं जिसके अंतर्गत विशेष के स्वरूप की धारणा, सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति का बोध और प्रवृत्ति के उत्तेजन से विशेष कर्मों की प्रेरणा पूर्वापर संबद्ध संगठित हो। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 168। उदाहरण, प्रत्यय बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेष का नाम भाव है। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 168। भाव कोश, मानव चित्त में स्थिर वह भाव प्रणाली जिसके भीतर समय समय पर कई भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है, भाव कोश है। उदाहरण, भाव कोश से अभिप्राय व भाव समष्टि नहीं है, बल्कि अंतःकरण में संगठित एक प्रणाली मात्र है, जिसमें कई भिन्न भिन्न भावों का संचार हुआ करता है। इस निरूपण के अनुसार प्रीति और बैर भाव नहीं, भाव कोश मात्र है। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 170। भावना, किसी प्रत्यक्ष वस्तु को मनोजगत में रूपायित करना, वस्तु को भाव रूप में लाना, परोक्ष विषय की कल्पना करना। उदाहरण, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 25। भाव पक्ष, कवि कर्म विधान के दो पक्षों, विभाव और भाव में से एक, मन में विद्यमान रति, शोक, उत्साह, क्रोध, विस्मय आदि भाव या विकार, जिनका प्रकाशन उद्दीपन एवं आलम्बन के सहारे किया जाता है। उदाहरण, कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं, विभाव पक्ष और भाव पक्ष। कवि एक और तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को और जमाने में समर्थ होती है, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभाव पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 109। भाव की क्षणिक दशा। जब एक आलंबन के प्रति किसी क्षण विशेष में कोई भाव व्यक्त होता है तब उसे उस भाव की क्षणिक दशा कहते हैं। उदाहरण, अच्छी तरह ध्यान देने पर यह पता चलेगा कि भाव की तीन दशाएं हैं, क्षणिक दशा, स्थायी दशा और शील दशा। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 119। भाव की शील दशा। जब अनेक अवसरों पर अनेक आलंबनों के प्रति कोई भाव व्यक्त होता है तब उसे उस भाव की शील दशा कहते हैं, क्योंकि उससे भाव को धारण करने वाले पात्र के शील की व्यंजना होती है। उदाहरण, क्षणिक दशा मुक्तक रचनाओं में देखी जाती है, स्थायी दशा महाकाव्य, खंड काव्य आदि प्रबंधों में शील दशा पात्रों के चित्रण में है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 220। भाव की स्थायी दशा। जब एक ही आलंबन पर एक आलंबन के प्रति होती है, जब एक ही आलंबन के प्रति अनेक अवसरों पर कोई भाव व्यक्त होता है तब उसे उस भाव की स्थायी दशा कहते हैं। उदाहरण, किसी भाव की क्षणिक दशा एक अवसर पर एक आलंबन के प्रति होती है, स्थायी दशा अनेक अवसरों पर एक ही आलंबन के प्रति होती है। भाव पद्धति मानसिक प्रवृत्ति मनोदशा। उदाहरण, किसी के हृदय को किसी भाव पद्धति पर लाने के लिए उसके अनुकूल मनोविकार उत्पन्न करते चलने की आवश्यकता होती है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 84। भाव प्रक्रिया। सुख दुख की इंद्रियज वेदना का राग द्वेष में, राग द्वेष का वासनाओं में, वासनाओं और प्रवृत्तियों में, तथा वासनाओं एवं प्रवृत्तियों का भाव रूप में परिणत होने की प्रक्रिया। भाव एक वृत्ति चक्र है, उसके अंतर्गत बोध वृत्ति, इच्छा, प्रवृत्ति और लक्षण, ये सभी मानसिक शारीरिक स्थितियां आती हैं। अतः भाव प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी का समावेश होता है। उदाहरण, भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव मंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में रहता है और कुछ अंतरक संज्ञा के क्षेत्र में छिपा रहता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 65। भाव प्रधान कविता। संवेदना प्रधान कविता ऐसी कविता जिसमें विभाव पक्ष, आलंबन और उद्दीपन के चित्रण पर विशेष बल नहीं दिया जाता। उदाहरण, भाव प्रधान कविता में ऐसी कविता में जिसमें संवेदना की विवृत्ति रहती है, आलंबन का आक्षेप पाठकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 102। भाव प्रवर्तक। भावों के जागृत और मूर्त करने वाले लाक्षणिक और व्यंजना प्रधान भाषा का भाव प्रवर्तक भाषा कहा जाता है। उदाहरण, भाषा के दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, सांकेतिक और तत्वबोधक तथा भाव प्रद। समीक्षा प्रधान प्रकार के प्रयोग से ही हो सकती है, दूसरे प्रकार के प्रयोग से नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 193। भाव प्रेरित वक्रता। आचार्य कुंतक ने कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्रपूर्ण कथन को ही काव्य का जीवित प्राण तत्व घोषित किया था। भाव प्रेरित वक्रता। आचार्य कुंतक ने कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्रपूर्ण कथन को ही काव्य का जीवित प्राण तत्व घोषित किया था। आचार्य शुक्ल उसी वक्रता को महत्व देते हैं जिसके प्रेरक तत्व के रूप में भाव की सत्ता विद्यमान हो। सूर रचित भ्रमर गीत में गोपियों की उक्ति वक्रता के वे इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि उसके मूल में गहन प्रेम विद्यमान है, अर्थात उनकी वचन वक्रता भाव प्रेरित है। उदाहरण, सूरदास की विशेषताओं पर स्थूल रूप में इतना विचार करने के उपरांत हम अब उनकी उस संगति भूमि में थोड़ा प्रवेश करते हैं जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें वचन की भाव प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। सूरदास पृष्ठ संख्या 119। उदाहरण, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम से यही वक्रता अभिप्रेत है, वक्रोक्ति अलंकार नहीं। सूरदास पृष्ठ संख्या 132। भाव योग। हृदय की मुक्ति की साधना ही भाव योग है। जिस प्रकार ज्ञान योग आत्मा को मुक्त करता है उसी प्रकार भाव योग मन और हृदय को मुक्त करता है। उदाहरण, इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 6। भाव योजना, भाव संगठन। काव्य में आलम्बन के प्रति विशेष लगाव के कारण आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों का विन्यास। उदाहरण, उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में जब झाड़ियों के कांटे उसके शरीर में चुभते हैं तो उससे सानिध्य का यह मधुर भाव बिना उठे नहीं रह सकता कि ये झाड़ उन्हीं प्राचीन झाड़ों के वंशज हैं जो राम लक्ष्मण और सीता को भी चुभे होंगे। इस भाव योजना के कारण उन झाड़ों को वह और ही दृष्टि से देखने लगता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 36 से 37। भाव विभाग। समाज में छोटी बड़ी श्रेणियों की स्थिति के अनुसार श्रद्धा, भक्ति, दया, करुणा, क्षमा आदि भावों के आश्रय और आलंबन का विभाजन। निम्न वर्ग के लोगों का उच्च वर्ग के प्रति श्रद्धा रखना और इसी प्रकार उच्च वर्ग के लोगों का निम्न वर्ग के प्रति दया का भाव रखना सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह एक प्रकार का भाव विभाग हुआ। शुक्ल जी के अनुसार वर्ण विभाग केवल कर्म विभाग नहीं भाव विभाग भी है। उदाहरण, यह पहले कहा जा चुका है कि वर्ण विभाग केवल कर्म विभाग नहीं भाव विभाग है। भाव व्यंजना, जहाँ रति, शोक, उत्साह आदि भावों की व्यंजना होती है वहाँ भाव व्यंजना मानी जाती है। यह भाव व्यंजना जब रस के सभी अवयवों, उद्दीपन, आलंबन, अनुभव, संचारी भाव के साथ होती है तब इसे रस व्यंजना कहते हैं। उदाहरण, अतः भाव व्यंजना या रस व्यंजना वस्तु व्यंजना से सर्वथा भिन्न कोटि की वृत्ति है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 164। नोट, काव्य शास्त्र के ग्रंथों में वस्तु व्यंजना और भाव व्यंजना में इतना ही अंतर बताया गया है कि वस्तु व्यंजना में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने का क्रम लक्षित होता है, जबकि भाव और रस व्यंजना की वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने का क्रम लक्षित नहीं होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह अंतर पर्याप्त नहीं है। भावानुभूति एक अर्थ में से दूसरे अर्थ तक जाने की क्रिया नहीं है, अतः भाव की अनुभूति को व्यंग्यार्थ कहना उपयुक्त नहीं है। आचार्य शुक्ल का मत है कि यदि व्यंग कोई अर्थ होता तो वस्तु या लक्ष्य के रूप में ही होगा। जैसा अमुक प्रेम कर रहा है, अमुक क्रोध कर रहा है, इन वाक्यों में व्यंग प्रेम वस्तु या तथ्य के रूप में ही है। इन वाक्यों में दो व्यक्तियों के बीच प्रेम की स्थिति का ज्ञान मात्र हो रहा है तथा यह तथ्य ज्ञान भावानुभूति नहीं है, जबकि काव्य में जहाँ भाव व्यंजना मानी गई है वहाँ भाव की अनुभूति होती है। इसलिए शुक्ल जी का निष्कर्ष है कि भाव व्यंजना या रस व्यंजना वस्तु व्यंजना से सर्वथा भिन्न कोटि की वृत्ति है। भाव सबलता, एक ही प्रसंग में परस्पर असंबद्ध कई भावों के संगात को भाव सबलता कहते हैं। उदाहरण, कभी कभी दो या दो से अधिक परस्पर संबद्ध भाव एक ही प्रसंग में प्रकट किए जाते हैं। साहित्य के पंडित लोग ऐसे दो भावों के साथ को भाव संधि और दो से अधिक भावों के संघात को भाव सबलता कहते हैं। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 243। इस भाव सबलता कहे या भाव पंचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार, कुछ अमर्ष, इन तीनों की मिश्र व्यंजना जैसी सबलता की कहने से संतोष नहीं होता पाई जाती है। सूरदास पृष्ठ संख्या 104। भाव शांति, किसी भाव की व्यंजना के समय किसी दूसरे विरुद्ध भाव की व्यंजना हो जाने पर पहले भाव की समाप्ति को भाव शांति कहते हैं। उदाहरण, किसी भाव को दूर होना भाव शांति है, जैसे पायन पारी मृदु वचन कही प्रिय कीन्ही मनुहारी नेक उतिरिछे जीते तब दीने असुआ ढारी। इसमें दृष्टिपात और अश्रुपात द्वारा मान या क्रोध की शांति व्यंजित की गयी है। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 242। नोट, भावोदय या भाव शांति दोनों ही स्थितियों में एक भाव की समाप्ति और दूसरे का उदय होता है, किंतु चमत्कार की प्रधानता के कारण दोनों का अलग अलग भेद मान लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने दोनों की परिभाषा करते समय दोनों में लक्षित होने वाली समान स्थिति दो भावों की सत्ता का होना से उत्पन्न जटिलता के सामने नहीं आने दिया। आचार्य शुक्ल ने इन भाव स्थितियों पर विचार करते हुए इनके द्वारा मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया, इसलिए अनुचित भाव की शांति को ही वे सच्ची भाव शांति मानते हैं। बुद्धि और विवेक द्वारा निष्पन्न भाव शांति को महत्व न देकर किसी प्रबल और परिस्थिति के अनुसार उचित भाव के उदय से अनुचित भाव की शांति को वे अधिक महत्व देते हैं। भाव संधि समान चमत्कार उत्पन्न करने वाले दो असंबद्ध भावों का एक ही प्रसंग में प्रकट किया जाना भाव संधि है। उदाहरण भाव संधि आदि का विशुद्ध उदाहरण वही होगा जिसमें दो या कई भाव किसी एक स्फुट प्रधान भाव के संचारी रूप में न होंगे, स्वतंत्र होंगे। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 246। भाव साहित्य मनुष्य के मनोभावों को केंद्र में रखकर लिखा गया साहित्य भावाभिव्यक्ति का साहित्य है। उदाहरण अस्तु यहाँ पर भाव साहित्य में मनुष्यतर चर अचर प्राणियों का थोड़ा और प्रेम का स्थान मिलना चाहिए। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 61। भाव स्थिति भाव का होना भाव शांति आदि चारों अवस्थाओं से अलग अवस्था में भावों की स्थिति ही भाव स्थिति मानी जाती है। संचारी आदि भावों का विधान न होने पर या आलंबन में सामान्य धर्म का अभाव होने पर भी व्यक्त होने वाले भावों की दशा को भाव स्थिति की दशा मानते हैं। उदाहरण मनुष्य के शील निर्माण में भाव शांति का दृश्य भाव स्थिति के दृश्य से कम प्रभाव उत्पादक नहीं होता। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 243। भावात्मिका वृत्ति रागात्मिका वृत्ति भाव प्रेरित वृत्ति अंतःकरण में निहित वासना से परिचालित वृत्ति। उदाहरण भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 20। भावात्मक अद्वैत रहस्यवाद प्रेम भावना के सहारे परम तत्व से अद्वैतता स्थापित करना ही भावात्मक अद्वैती रहस्यवाद है। यही शुक्ल जी के अनुसार ज्ञान क्षेत्र के अद्वैतवाद का भाव के क्षेत्र में संचरण है। उदाहरण भारतीय परंपरा का भक्त अपने उपास्य को बाहर लोक के बीच प्रतिष्ठित करके देखता है, अपने हृदय के एकांत कोने में ही नहीं। जब फारस में भावात्मक अद्वैती रहस्यवाद खूब फैला। जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 163। भावात्मक रहस्यवाद रहस्यमय सत्ता के प्रति प्रेम की सघन अनुभूति के आधार पर अद्वैत की स्थिति तक पहुंचना भावात्मक रहस्यवाद है। उदाहरण कबीरदास जी किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 652। उदाहरण अरब और फारस का भावात्मक रहस्यवाद लेकर जब सूफी हिंदुस्तान में आए तब उन्हें यही रहस्योन्मुख संप्रदाय मिला। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 5। भावाभास भाव योजना में यदि अनौचित्य लक्ष्य हो तो अभावाभास माना जाएगा। आचार्य शुक्ल ने इस संदर्भ में विचार करते हुए प्रतिपादित किया कि आलंबन के प्रति आश्रय की भाव व्यंजना करते हुए जब कवि निष्ठा भेद या अनौचित ज्ञान के कारण उदासीन या विरक्त रहता है तो उसके द्वारा व्यक्त भाव सहज न होकर आरोपित होता है। ऐसी स्थिति में भी रसाभास या भावाभास ही मानना चाहिए। उदाहरण यदि कवि का भाव उदासीन है या अनौचित ज्ञान के कारण विरक्त है तो आश्रय के भाव का प्रदर्शन वह केवल आरोपित या आहार्य रूप में करता है। ऐसे स्थान पर रसाभास या भावाभास ही मानना चाहिए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 91। भावुकता सेंटिमेंटलिटी काव्य में स्वस्थ भावाभिव्यक्ति के स्थान पर अत्यधिक आवेगपूर्ण भाव दशा का चित्रण उपयुक्त एवं संयमित भावना का उल्लंघन करके मानव स्वभाव को आवेगशील बना देने वाली भावुकता। उदाहरण जब कविता केवल कल्पना का खेल समझ जाएगी और भावुकता के सेंटिमेंटलिटी कहकर उपेक्षा को जाएगी तब काव्य का प्रकृति स्वरूप दृष्टि के सामने आने का साहस कैसे कर सकता है। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 335। भावों का व्यायाम एक्सरसाइज ऑफ इमोशन भावों का प्रसार प्रयोग और अभ्यास। उदाहरण उक्त क्षेत्र में भूतकाल में जिनके भावों का व्यायाम के लिए संचरण होता है उदाहरण रहता है उनके भावों का वर्तमान विषय के साथ उचित एवं उपयुक्त संबंध स्थापित हो जाता है। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 148। भावोदय संचारी भावों की एक दशा जहाँ किसी भाव की शांति के बाद किसी दूसरे भाव का उदय हो और इस उदय में ही विशेष चमत्कार हो, वहां भावोदय माना जाता है। उदाहरण, किसी भाव के संचार का आरंभ मात्र भावोदय कहलाता है। जैसे दास जू जा मुख ज्योति, लखे तू सुधाधर ज्योति, खरी सुक चाती है, आगी लिए चली जाती, सो मेरे हिये बिच आगी दिए चली जाती है। ख, कामिनी के कटु बैन, सुनत पिया पलटी चलियो जब, छाणी तिया उसास नीर नयनन झलकियो तब। पहले पद में राग का उदय और दूसरे में विषाद का उदय समझना चाहिए। रस्म मानसा पृष्ठ संख्या 241। भावोत्तेजक प्रतीक, इमोशनल सिंबल्स, वे प्रतीक जो मनोभावों को उद्दीप्त और जागृत करते हैं। उदाहरण, प्रतीक दो प्रकार का होता है, कुछ तो मनोविकार या भावों को जगाते हैं और कुछ भावनाओं या विचारों को। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 109। भाव की स्तब्धता, परस्पराबद्ध विशेषणों, समासों और उपमानों के प्रयोग की सीमा में बंधी हुई भाषा को स्तब्ध या जड़ भाषा और उसकी जड़ीभूत अभिव्यक्ति क्षमता को उसकी स्तब्धता कहते हैं। उदाहरण, कुछ दिन पहले हमारी हिंदी की स्थिति ऐसी ही हो गई थी, उसका विचार क्षेत्र अग्रसर होना कठिन देख पड़ता था। बने बनाए समास जिनका व्यवहार हजारों वर्ष पहले हो चुका था, लाकर भाषा अलंकृत की जाती थी। किसी परिचित वस्तु के लिए जो जो विशेषण बहुत काल से स्थित है, उनके अतिरिक्त कोई अपनी ओर से लाना मानो भारत भूमि के बाहर पैर बढ़ाना था। जहाँ तक की उपमाएं भी स्थित थी, मुख के लिए चंद्रमा, हाथ पैर के लिए कमल, प्रताप के लिए सूर्य, कहाँ तक गिनावे, जहाँ जहाँ इनके आगे कोई बढ़ा कि वह साहित्य में अनभिज्ञ ठहराया गया। अर्थात इन सब नियत उपमाओं का जानना भी आवश्यक समझा जाता था। पाठक, यह भाषा की स्तब्धता है कि विचारों की शिथिलता की जाति मानसिक अवनति का चिन्ह है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 74 से चिंतामणि भाग 3 पृष्ठ संख्या 74 से 75। भूत यज्ञ, जीवों को भोजन देकर तुष्ट करना। उदाहरण, इस पंच महायज्ञ के भीतर नृयज्ञ या भूत यज्ञ भी है। सूरदास पृष्ठ संख्या 6। भ्रम, जहाँ सादृश्य के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ भ्रम अलंकार होता है। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस भ्रम का आधार प्राकृतिक या सहज सादृश्य नहीं, अब तो कवि प्रतिबोध भूत सादृश्य होता है। उदाहरण, अब भ्रम का एक ऐसा ही उदाहरण लीजिए। सीता जी अपने जलने के लिए अशोक में अंगार मांग रही थी, इतने में हनुमान ने पेड़ के ऊपर से राम की मनोहर मुद्रिका गिराई। जनी अशोक अंगार सिया हर उठी कर गहयो। इसी प्रकार जहाँ तक उत्तरकांड में अयोध्या की विभूति का वर्णन है, वहाँ कहा गया है, मुनि मुख मेली डारी कपि देही। इन दोनों उदाहरणों में भ्रम अलंकार नहीं है। अलंकार में भ्रम का विषय की विशेषता होती है। भ्रांत की विशेषता में तो पागलों का भ्रम भी अलंकार हो जाता है। सीता का जो भ्रम है वह विरह की विह्वलता के कारण और बंदरों का जो भ्रम है वह पशुत्व के कारण। इस प्रकार का भ्रम अलंकार नहीं है, यह बात आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया। उदाहरण, इसी प्रकार एक रूप तुम भ्राता दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सो में भ्रम अलंकार नहीं है। केवल वस्तुत्व या प्रेमत्व प्रमेयत्व जिसमें हो वह अलंकार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 93। उदाहरण, भ्रम अलंकार के वास्तविक उदाहरण के रूप में शुक्ल जी ने क्रमशः जायसी और तुलसी की निम्नलिखित पंक्ति उद्धृत की है। भूल चकोर दीठ मुखलावा भ्रम, जायसी ग्रंथालय भूमिका पृष्ठ संख्या 116। उदाहरण, सर चारिक चारु बनाई कसे कटिपानी सरासन सायक लय बन खेलत राम फिरे मृगया तुलसी छविसो बरने किमी के। अवलोक अलौकिक रूप मृगी मृग चौंक चके चितवय चित दे न डगे न भये जिय जान सुली मुख पंच धरे रति नायक है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 98। नोट, आचार्य शुक्ल ने भ्रम अलंकार का स्वरूप स्पष्ट करते हुए संस्कृत के टीकाकार नागेश भट्ट और आचार्य विद्याधर का मत उद्धृत किया। आचार्य विद्याधर ने कहा, साधर में कवि समय संप्रसिद्धम कांतिमत्वादि न तु वस्तुत्वम प्रमेयत्वादि ग्राह्यम। इस प्रकार विद्याधर ने यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार धर्म सम्य के आधार पर भ्रम उत्पन्न होता है, वही कवि समय प्रसिद्ध रमणीयता पर आधारित होना चाहिए, वस्तु की पहचान या बोध कराने वाली समता पर आधारित नहीं। इस प्रकार गोविंद ठाकुर के काव्य प्रदीप की वृहद तथा लघु उद्योत नाम से टीका करने वाले नागेश भट्ट ने कहा, मर्म प्रहार कृत चित विच्छेप विरहा कृत उन्मादान जन्य भ्रांतेश्च नालंकारत्वम्। अर्थात मर्मांतक पीड़ा से चित्त विच्छेद हो जाना या विरहावस्था के कारण उन्माद की स्थिति होने पर जो भ्रम होता है, जैसा कि अशोक वृक्ष से गिरने वाली अंगूठी को देखकर सीता जी को हुआ था, वह अलंकार नहीं है।